एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार, अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जाने वाले हैं जो शायद हम सबने कभी न कभी आधी रात को जागते हुए खुद से पूछा होगा।
कौन से सवाल?
यही कि ये जो दुनिया है, ये जो असलियत है, क्या ये सच में वैसी ही है जैसी हमें दिखती है?
बिल्कुल। और इस गहरी तहकीकात में हमारा गाइड बनने वाली है एक बहुत ही दिलचस्प किताब। नाम है रियलिटी अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, और इसे लिखा है जेन वेस्टरहॉफ ने।
और यकीन मानिए, ये किताब हमारे भरोसे की हर दीवार को धीरे धीरे गिरा देती है।
हाँ, और आज के जमाने में तो ये सवाल और भी जरूरी हो गया है ना?
सही कहा। एक तरफ वर्चुअल रियलिटी है, दूसरी तरफ एआई है जो ऐसी तस्वीरें बना रहा है जो बिल्कुल असली लगती हैं। तो ऐसे में असली और नकली के बीच की लाइन, वो तो धुंधली होती जा रही है।
तो चलिए इस दिमागी सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि असलियत के इस मायाजाल के पीछे आखिर छिपा क्या है।
तो इस सफर पर हमारा गाइड कौन है? ये जैन क्रिस्टोफ वेस्टरहॉफ आखिर हैं कौन?
देखिए, ये कोई आम दार्शनिक नहीं है।
अच्छा।
वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बौद्ध दर्शन के प्रोफेसर हैं, पर उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि उनके पास दो दुनियाओं की चाबियां हैं।
दो दुनियाओं की मतलब?
मतलब वो पश्चिमी दर्शन के तर्क और विज्ञान को भी उतनी ही गहराई से समझते हैं जितनी गहराई से वो पूर्वी दर्शन को।
अच्छा, यानी एक तरफ वो अरिस्टोटल और कांट को पढ़ते हैं
और दूसरी तरफ वो संस्कृत और तिब्बती भाषाएं भी जानते हैं और नागार्जुन जैसे भारतीय विचारकों के काम में माहिर हैं।
अरे वाह, इसका मतलब तो ये हुआ कि उनके पास असलियत को देखने के लिए एक नहीं बल्कि दो शक्तिशाली चश्मे हैं।
एकदम सही, एक विज्ञान का और दूसरा अध्यात्म का। और इसीलिए जब वो असलियत के बारे में लिखते हैं तो वो हमें एक बहुत ही अनोखा और पूरा नजरिया दे पाते हैं।
तो फिर ये किताब करती क्या है? क्या ये हमें बताती है कि असली सच क्या है?
नहीं, उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प काम करती है। ये किताब एक टूर गाइड की तरह है जो हमें हमारी रोजमर्रा की जानी पहचानी दुनिया में घुमाती है, लेकिन हर कदम पर रुककर पूछती है, क्या आप वाकई जानते हैं कि ये क्या है?
अच्छा।
इसका मुख्य तर्क ये है कि जिसे हम ठोस स्थिर दुनिया समझते हैं वो असल में हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक यूजर इंटरफेस है।
यूजर इंटरफेस जैसे एक कंप्यूटर का डेस्कटॉप होता है।
हाँ,
जहाँ हमें सुंदर सुंदर आइकॉन दिखते हैं, लेकिन असली कहानी तो पीछे की जीरोज एंड वंस की कोडिंग में होती है।
बिल्कुल वही। किताब कहती है कि हमारी इंद्रियां हमें असलियत नहीं दिखाती, बल्कि जिंदा रहने के लिए जरूरी एक आसान कामचलाऊ नक्शा दिखाती हैं।
और असली कोडिंग, असली असलियत, वो कुछ और ही है।
हाँ, और ये किताब उसी कोडिंग को समझने की एक कोशिश है।
ठीक है, तो ये एक तरह की जासूसी तहकीकात हुई,
कह सकते हैं।
और हमारा पहला संदिग्ध कौन है?
लाल है। ये तो एक सीधी साधी सच्चाई लगती है।
लगती तो है,
पर किताब पूछती है, क्या ये लालिमा, ये जो रेडनेस है, टमाटर के अंदर मौजूद कोई चीज है? विज्ञान कहता है नहीं। टमाटर की सतह बस एक खास वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, वो लाइट जब हमारी आंखों के रेटिना से टकराती है और हमारा दिमाग उस सिग्नल को प्रोसेस करता है, तब लाल रंग का अनुभव पैदा होता है।
मतलब लालिमा टमाटर में नहीं, हमारे दिमाग में है।
बिल्कुल।
ये सुनने में बहुत अजीब है। मतलब मैं जिस दुनिया को देख रहा हूँ वो एक तरह का धोखा है।
धोखा नहीं, पर एक इंटरप्रिटेशन जरूर है।
इस पर यकीन करना मुश्किल है।
और ये सिर्फ रंगों की बात नहीं है।
हाँ।
यही बात आवाज पर भी लागू होती है।
कैसे?
पेड़ के गिरने की कोई आवाज नहीं होती, सिर्फ हवा में वाइब्रेशंस होती हैं। और स्पर्श यानी टच भी एक कहानी है।
अच्छा, वो कैसे?
जब आप मेज को छूते हैं तो आपको वो ठोस लगती है ना?
हाँ, बिल्कुल।
पर असल में आपके हाथ के परमाणु मेज के परमाणुओं को छू भी नहीं रहे।
क्या?
उनके बीच का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन है वो आपको ठोसपन का एहसास कराता है। असल में तो मेज का 99.9% हिस्सा खाली जगह है।
बाप रे, तो हमारी पहली गवाह हमारी इंद्रियां, वो तो भरोसे के लायक नहीं निकली।
वो हमें असलियत नहीं बल्कि उसका एक बहुत ही ज्यादा एडिट किया हुआ सिंपल सा वर्जन दिखाती हैं।
ठीक है, तो अब हम अपनी तहकीकात में कहां जाएं? अगर इंद्रियों पर भरोसा नहीं तो विज्ञान पर तो होगा।
हाँ, यही अगला कदम है। पर यहाँ कहानी और भी उलझ जाती है।
अरे?
किताब हमें मैनिफेस्ट इमेज यानी जो दुनिया हमें दिखती है और साइंटिफिक इमेज जो विज्ञान बताता है उसके बीच का फर्क दिखाती है।
और
क्वांटम फिजिक्स की साइंटिफिक इमेज तो हमारे होश उड़ा देती है।
कैसे? मतलब क्या कहती है क्वांटम फिजिक्स?
उसके मुताबिक एक कण जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन तब तक किसी एक जगह पर होता ही नहीं जब तक हम उसे देखते नहीं।
एक मिनट,
वो एक ही समय में कई जगहों पर होने की संभावना के रूप में मौजूद होता है। इसे सुपरपोजिशन कहते हैं।
इसका मतलब क्या हुआ? ये तो ऐसा है जैसे मैं एक ही वक्त पर घर पर भी हूँ, दफ्तर में भी और बाजार में भी।
हाँ,
और जब तक कोई मुझे फोन करके ना पूछे तब तक मैं हर जगह हूँ।
आपने बिल्कुल सही समझा, क्वांटम दुनिया इसी अजीब तरीके से काम करती है।
कमाल है।
और इतना ही नहीं, एंटैंगलमेंट नाम की एक और चीज है।
वो क्या है?
दो कण अरबों मील दूर होने पर भी एक दूसरे से ऐसे जुड़े हो सकते हैं कि एक पर कुछ करने का असर तुरंत दूसरे पर होता है।
तुरंत?
हाँ, आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था।
वाह, मतलब हमारा दूसरा गवाह विज्ञान असलियत को सुलझाने की जगह उसे और ज्यादा रहस्यमयी और जादुई बता रहा है।
हाँ, एक तरह से।
मेरा तो सिर घूम गया है। तो हमारे पास बचा क्या अगर हमारी इंद्रियां और विज्ञान दोनों ही हमें एक धुंधली तस्वीर दे रहे हैं? तो कम से कम हमारे आसपास की ठोस चीजें
जैसे ये मेज, ये कुर्सी।
हाँ, ये तो असली होंगी, है ना?
यही इस तहकीकात का अगला पड़ाव है, चीजों की दुनिया। क्या एक कुर्सी वाकई में एक चीज है?
अब इसमें क्या शक है?
इसे समझाने के लिए लेखक थीजियस के जहाज की मशहूर पहेली का इस्तेमाल करते हैं।
हाँ हाँ, मैंने ये पहेली सुनी है। एक जहाज है जिसके तख्ते पुराने होने पर एक एक करके बदले जाते हैं।
बिल्कुल।
सालों बाद जब उसका आखिरी पुराना तख्ता भी बदल दिया जाता है, तो क्या वो अब भी वही थीसियस का जहाज है?
और पहेली का दूसरा हिस्सा ये है कि अगर उन सभी पुराने तख्तों को जोड़कर एक और जहाज बना दिया जाए,
तो असली जहाज कौन सा होगा, पहला वाला या दूसरा वाला?
एक मिनट, लेकिन अगर पुराने तख्तों से बना जहाज असली नहीं है तो वो क्या है, कबाड़? ये तो बस शब्दों का खेल लग रहा है।
यही तो किताब का पॉइंट है।
अच्छा,
असली और नकली का फैसला हम करते हैं, प्रकृति नहीं। ये शब्दों का ही खेल है और हम ये खेल हर वक्त खेलते हैं।
जैसे?
जैसे पहाड़ कहाँ खत्म होता है और मैदान कहाँ से शुरू होता है।
उसकी कोई प्राकृतिक लाइन तो नहीं है?
नहीं है। हम अपनी सुविधा के लिए एक बहती हुई प्रक्रिया पर चीज का एक लेबल लगा देते हैं।
तो चीजें असल में प्रक्रियाएं हैं।
ठीक है, जहाज और पहाड़ों का बदलना तो समझ आता है, लेकिन किताब इस तर्क को लेकर एक ऐसी जगह जाती है जो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है।
कहाँ?
वो इसे मैं पर लागू करती है। ये कहना कि मैं भी एक कहानी हूं।
हाँ, ये थोड़ा अनसेटलिंग है।
बहुत ज्यादा। इसका क्या मतलब है कि मैं सच में नहीं हूं?
ये इस किताब का सबसे गहरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। लेखक कहते हैं कि जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हमें कोई एक ठोस, स्थायी मैं नहीं मिलता।
तो क्या मिलता है?
विचारों की एक धारा, भावनाओं का एक समुंदर, यादों का एक एल्बम। और ये सब लगातार बदल रहे हैं, तो फिर वो कौन सी चीज है जो इन सबको एक साथ बांधकर मैं बनाती है?
ये नो सेल्फ या अनात्मन वाली बात मुझे हमेशा परेशान करती है। मुझे तो लगता है कि मैं वही इंसान हूं जो 10 साल पहले था, भले ही मेरे शरीर के सेल्स बदल गए हों, मेरे विचार बदल गए हों।
वो जुड़ाव की भावना।
हाँ, वो कंटिन्यूटी बहुत असली लगती है।
और वो भावना जरूरी भी है। किताब ये नहीं कह रही कि हमें मैं को छोड़ देना चाहिए।
तो फिर?
वो कह रही है कि मैं कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे अंदर पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी है। मैं एक कहानी है।
एक कहानी?
हाँ, जो हमारा दिमाग इन बिखरे हुए अनुभवों को जोड़ने के लिए लगातार गढ़ता रहता है। ये एक उपयोगी कहानी है जो हमें समाज में जीने में मदद करती है। लेकिन ये एक लचीली, बदलती हुई कहानी है, पत्थर की लकीर नहीं।
तो हमारी पूरी तहकीकात के बाद हम पहुंचे कहाँ? हमारी इंद्रियां भरोसेमंद नहीं। विज्ञान एक अजीब दुनिया दिखाता है। चीजें बस प्रक्रियाएं हैं और मैं एक कहानी है। ऐसे में कोई इंसान जिए तो कैसे जिए? क्या हर चीज एक भ्रम है?
यहीं पर किताब धर्म और अध्यात्म, खासकर महायान बौद्ध धर्म की तरफ मुड़ती है।
अच्छा।
जो एक बहुत ही सुंदर समाधान देता है। वो दो सत्यों के सिद्धांत की बात करती है, एक सांवृतिक सत्य यानी कन्वेंशनल रियलिटी,
और दूसरा
परमार्थ सत्य यानी अल्टीमेट रियलिटी।
ये क्या है?
सांवृतिक सत्य हमारी रोजमर्रा की दुनिया है। इस दुनिया में टमाटर लाल है, मेज ठोस है और आप और मैं मौजूद है। ये अपने स्तर पर सच है।
ठीक है।
जैसे सपने में दिखने वाली चीजें सपने के अंदर सच लगती हैं, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन एक और गहरा सच है, परमार्थ सत्य।
और वो क्या है?
ये कहता है कि कोई भी चीज अपने आप में स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं है। हर चीज दूसरी चीजों पर निर्भर है।
कोई उदाहरण?
जैसे, क्या लहर का समंदर के बिना कोई वजूद है?
नहीं, लहर तो बस समंदर का ही ग्रुप है।
बौद्ध दर्शन कहता है कि दुनिया की हर चीज उस लहर की तरह है, किसी बड़ी चीज का हिस्सा है, अपने आप में अकेली और स्वतंत्र नहीं। इसी को शून्यता कहते हैं।
तो शून्यता का मतलब खालीपन या कुछ नहीं है?
बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है स्वतंत्र अस्तित्व का न होना। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है।
ये फ्रेमवर्क कमाल का है,
है ना? ये विज्ञान और रोजमर्रा के अनुभव दोनों को एक साथ जगा देता है।
तो इस पूरी दिमागी कसरत से जो बड़े विचार निकल कर आते हैं वो क्या है?
मेरे लिए पहला तो यही है कि हमारी धारणाएं भरोसेमंद नहीं है।
हम असलियत की एक बहुत ही सरल एडिट की हुई फिल्म देखते हैं।
बिल्कुल। दूसरा बड़ा विचार है असलियत का रचा हुआ होना। हमारा दिमाग, हमारी भाषा, हमारा समाज, ये सब मिलकर उस दुनिया को बनाते हैं जिसे हम सच मानते हैं।
जैसे भारत में एक ही त्योहार को अलग अलग समुदाय अपनी अपनी असलियत के हिसाब से मनाते हैं,
और सबके लिए उनकी असलियत ही सच होती है।
तीसरा जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है वो है विज्ञान और पूर्वी दर्शन का संगम।
हाँ, ये सोचना ही कमाल है कि क्वांटम फिजिक्स आज जो कह रही है
कि दुनिया ठोस चीजों का ढेर नहीं बल्कि संबंधों का एक जाल है,
वैसी ही बातें नागार्जुन जैसे दार्शनिक सदियां पहले कह गए थे।
और चौथा?
चौथा है चीजों का सारहीन होना, मतलब एंटी एसेंशियलिज्म,
जिसका मतलब है कि किसी भी चीज का, चाहे वो इंसान हो या पत्थर, कोई स्थायी स्वतंत्र सार नहीं होता।
हाँ, सब कुछ एक प्रक्रिया है, एक प्रवाह है।
किताब में कुछ बातें तो ऐसी हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं।
कौन सी?
जैसे ये विचार कि हमारी इंद्रियों की दुनिया असलियत पर एक खिड़की नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए बनाया गया एक यूजर इंटरफेस है।
इसका सीधा सा मतलब है कि हमें थोड़ी विनम्रता रखनी चाहिए। जो हमें दिख रहा है जरूरी नहीं कि वही पूरा सच हो। ये हमें दूसरों के नजरिए को, उनकी असलियत को समझने और इज्जत देने में मदद करता है।
और एक और दमदार बात है, पहचान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम दुनिया में खोजते हैं,
बल्कि यह एक वैचारिक सीमा है जिसे हम सुविधा के लिए दुनिया पर थोकते हैं।
हाँ।
ये हमें चीजों और लोगों से बहुत ज्यादा चिपके रहने से रोकता है। अगर सब कुछ एक बदलती हुई प्रक्रिया है तो हम बदलाव को स्वीकार करना सीखते हैं,
चाहे वो रिश्तों में हो, करियर में हो या खुद हमारे अंदर हो।
बिल्कुल।
ये सब सुनने में तो बहुत गहरा फलसफा लगता है, पर कोई आम इंसान अपनी जिंदगी में इसका क्या करे?
इससे मेरी नौकरी या मेरे रिश्तों में क्या फर्क पड़ेगा?
बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है।
अच्छा?
सबसे पहली चीज है बौद्धिक विनम्रता, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी।
जब आप ये समझ जाते हैं कि आपका सच ही एकमात्र सच नहीं है, तो आप दूसरों को सुनने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। बहसें लड़ाइयों में नहीं बदलती।
और दूसरा है बेहतर आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग।
ये किताब हमें सिर्फ मीडिया की खबरों पर सवाल करना नहीं सिखाती,
बल्कि उस मैं पर सवाल करना सिखाती है जो उन खबरों को पढ़ रहा है।
सही कहा। जब आप ये समझने लगते हैं कि आपकी अपनी राय भी एक गढ़ी हुई कहानी हो सकती है, तब आप जानकारी को बिल्कुल नए तरीके से देखते हैं।
और शायद सबसे महत्वपूर्ण है मनोवैज्ञानिक लचीलापन, साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी। ये विचार कि मैं कोई ठोस चीज नहीं बल्कि एक बदलती हुई कहानी हूँ, बहुत आजादी देता है।
इसका मतलब है कि हम अपनी पुरानी गलतियों या नकारात्मक पहचान से बंधे नहीं हैं।
अगर मैं एक कहानी है तो मैं उस कहानी का अगला अध्याय आज से अलग लिख सकता हूँ।
हम बदल सकते हैं।
मेरे लिए इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे ये रहा कि असलियत को खोजने की ये यात्रा किसी एक जवाब तक पहुंचने से ज्यादा खूबसूरत है।
सवालों के साथ जीना।
हाँ, सवालों के साथ जीना तयशुदा जवाबों के साथ जीने से कहीं ज्यादा रोमांचक है। और वो थीसियस का जहाज वाली पहेली, उसने तो चीजों को देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया है।
और मेरे लिए सबसे आकर्षक बात ये थी कि कैसे आधुनिक भौतिकी और प्राचीन दर्शन एक ही निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं,
जैसे वो एक ही पहाड़ पर दो अलग अलग रास्तों से चढ़ रहे हों।
बिल्कुल। ये किताब हमें दुनिया को चीजों के कलेक्शन के रूप में नहीं बल्कि एक जुड़े हुए जीवंत नाचते हुए जाल के रूप में देखने की दृष्टि देती है, और ये नजरिया बहुत खूबसूरत है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।